हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंकल, आप पागल हो गए हो क्या? ऐसी कौन उठाता है बच्चों को? आप मुझे आराम से भी उठा सकते थे, रूही ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। पार्थ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक लंबी सांस छोड़ी और फिर उस बॉटल को वहीं फर्श पर फेंकते हुए टेबल पर बैठ गया। उसने रूही की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है बटरफ्लाई, मैं यहाँ तुम्हारी बेबी सिटिंग के लिए हूँ या फिर मुझे अपना केयरटेकर समझ रखा है? रूही को याद आया कि ये वही इंसान है जिसने उसे किडनैप किया था। ये उसका घर नहीं है जो वो उस पर गुस्सा कर सकती है। उसकी आंखों में तुरंत पानी आ गया और डर के कारण उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने अपनी नज़रें घुमाकर देखी तो कल वाले बॉडीगार्ड्स आज भी उसके आसपास ही खड़े बने थे। उसने डरते हुए अपना सलाइवा निगला और अपने मन में कहा, ये क्या कर दिया रूही, कोई अपने किडनैपर पर भी गुस्सा करता है क्या? ऊपर से मैंने इन्हें पागल भी बोल दिया, क्या अब ये मुझे और ज़्यादा पनिशमेंट देंगे? नहीं, मैं सॉरी बोल दूंगी, फिर कैसे देंगे? उसने जल्दी से अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि मैं किडनैप हो गई हूँ। और तुम्हारी माफ़ी से मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा? रियली बहुत भोली हो बटरफ्लाई, पार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने हाथ आके बढ़ाया और रूही के गालों पर चिपके उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तो अब से तुम्हारा पनिशमेंट टाइम शुरू होता है, पहले तो ये कपड़े चेंज करके आओ। इतना बोलने के साथ उसकी नज़रें रूही के क्लीवेज पर घूम रही थीं, जहाँ से उसका वो वाइट कलर का टॉप गीला होकर चिपक गया था और उसके बॉडी कर्व्स काफ़ी हद तक दिख रहे थे। पार्थ ने अपनी जेब से गन निकाली और फिर उसे लोड किया। ये देखकर रूही की आंखें फैल गईं। उसने जल्दी से कहा, आप मुझे इतनी सी बात के लिए जान से नहीं मार सकते हैं, प्लीज़ आई एम सॉरी। पार्थ ने गन को रूही के चेहरे पर फिराते हुए कहा, तुम्हारे लिए नहीं है बटरफ्लाई, मुझे तुम्हें नहीं मारना है, मुझे तुम्हें मारना होता तो अब तक मार चुका होता, तुम्हारे उठने का इंतज़ार नहीं करता, मुझे खूबसूरत लड़कियों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी ये सनकी भरी बातें सुनकर रूही की रूह तक कांप रही थी, उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जम चुकी थी। उसने डरते हुए आसपास देखा क्योंकि वो पार्थ की उन नीली नज़रों से ज़्यादा देर तक अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और ठीक उसी वक्त उसे गोली चलने की आवाज़ आई और उसने डरते हुए जल्दी से अपने दोनों हाथों से पार्थ को पकड़ लिया और फिर डरते हुए बोली, प्लीज़ 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 मुझे मत मारना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। पीछे एक बॉडीगार्ड के गिरने की आवाज़ आई जिसे सुनकर सब बॉडीगार्ड्स की नज़रें उसकी तरफ गईं। गोली सीधा उसके सीने पर लगी थी और वो तड़पते हुए अब उन सब की तरफ देख रहा था। पार्थ ने एक झटके से रूही को खुद से अलग किया और फिर टेबल से उठकर उस बॉडीगार्ड के पास गया तो उसके पास बैठा और फिर अपने हाथ में पड़ी गन को उसकी चिन पर रखते हुए बोला, तुम्हारी नज़रें बटरफ्लाई को घूर रही थीं, बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना बोलकर उसने एक बार फिर गोली चलाई जो सीधा उस बॉडीगार्ड के माथे के बीचों बीच लगी थी, जिसके बाद वो उठा और अपनी गन को वापस पेट की जेब में डालते हुए बाकी सब बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, आई होप तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं। उसकी बातों में साफ साफ धमकी छटी थी कि कोई भी रूही को गंदी नज़रों से नहीं देख सकता है और जो भी देखेगा उसका हाल इस बॉडीगार्ड की तरह ही होने वाला है जो अब तड़पते हुए उनके सामने दम तोड़ चुका था। सारे बॉडीगार्ड्स ने एक साथ अपनी गर्दन झुका ली जैसे उन्हें पार्थ की बातों का मतलब समझ आ गया हो और अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नज़र उठाकर रूही की तरफ देख पाएं। वहीं ये देखकर पार्थ को अलग सा सेटिस्फैक्शन मिला था। उसने सबसे नज़रें हटाकर अब रूही की तरफ देखा जिसने अपने दोनों हाथ अपने कान पर रखे थे और कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे जनवरी महीने की ठंड में कांपता है। पार्थ ने हाथ के इशारे से सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया और खुद धीमे कदमों से चलकर रूही के पास गया। वो वापस इस टेबल पर बैठा और फिर रूही का एक हाथ उसके कान से हटाते हुए बोला, बटरफ्लाई ये तो मेरा डेली का गेम शो है, ये तुम्हें रोज देखना पड़ेगा, अगर तुम ऐसे डर जाओगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही रूही ने अपनी लाल आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोलते वक्त उसकी जबान लड़खड़ा गई और अगले ही पल वो बेहोश होते हुए सामने की तरफ गिर पड़ी। उसका सिर सीधा पार्थ के घुटने पर लगा था क्योंकि वो उसके ठीक सामने बैठी थी। ये देखकर पार्थ का एक हाथ हवा में ही रुक गया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की सिर्फ दो गोलियों की आवाज़ सुनकर ही इस तरीके से बेहोश हो जाएगी। उसने गुस्से में फिर से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और फिर एक गहरी सांस ली। उसने एक झटके से रूही को अपने कंधे पर उठा लिया बिल्कुल किसी बोरी की तरह और फिर तेज कदमों से अंदर लिफ्ट की तरफ गया। लिफ्ट में चलकर उसने थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस किया जिसके बाद वो लिफ्ट सीधा थर्ड फ्लोर पर जाकर रुकी जो कि पार्थ का प्राइवेट स्पेस था, वहाँ बहुत कम लोगों की एंट्री अलाउड है। अंदर जाकर पार्थ ने अपने मास्टर बेडरूम को अपनी फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और फिर तेज कदमों से चलता हुआ अंदर गया। अंदर एक राउंड शेप का बेड था जिस पर ब्लैक कलर की ही चादर बिछी हुई थी और ब्लैक कलर के ही पिलो थे। कमरे के पर्दे भी इसी तरह काले रंग में रंगे हुए थे, ऐसा लग रहा था ये कलर पार्थ का पसंदीदा कलर है। पार्थ ने रूही को बेड पर बिल्कुल बेपरवाही से गिराया जैसे उसने अपने कंधे पर मौजूद कितना ही बड़ा भार उतार दिया हो। रूही का शरीर एक कमजोर सी आवाज के साथ बेड पर गिरा। वो एक बार बाउंस हुई, जिसके साथ ही उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर गए, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। पार्थ ने उस पर अपनी जल्दी निगाहें डाली और फिर अपनी मुट्ठी करते हुए गुस्से में बोला, कोई इंसान दो गोलियों की आवाज से कैसे बेहोश हो सकता है? मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बटरफ्लाई बुला दिया था, तुम तो सच में उसकी जितनी नाजुक निकली। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि जिंदा लाश जैसी पड़ी लड़की कहीं सच में तो नहीं मर गई है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज को चेक किया। उसकी नब्ज नॉर्मल थी, लेकिन उसकी बॉडी टेम्परेचर अचानक ही बहुत ज्यादा हाई हो गया था। अगले ही सेकंड उसके एक्सप्रेशन गुस्से और हैरानी से सीधा इरिटेशन में बदल गया। ग्रेट बटरफ्लाई, तुम इतनी जल्दी बीमार भी हो गई और मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। इससे अच्छा होता कि मैं कुछ कर लेता, तो फिर तुम्हें बीमार देखकर मुझे थोड़ा मजा भी आता। अभी तो सिर्फ इरिटेशन हो रही है। कुछ सोचकर उसने गहरी सांस ली और फिर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया। सामने से उसके बॉडीगार्ड ने हेलो बोला तो पार्थ ने ठंडी आवाज में कहा, डॉक्टर सिया को बुलाना और उसे सीधा थर्ड फ्लोर पर भेज देना। उसने कुछ पल वैसे ही रूही को देखा और फिर कमरे में मौजूद बालकनी की तरफ चला गया। वो उधर शांत कोने में खड़ा होकर अब भी रूही की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था रूही की बेहोशी और उसके बुखार ने उसे परेशान कर दिया हो। कुछ ही देर में एक फीमेल डॉक्टर भागते हुए कमरे के अंदर आई। उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी और काले रंग की पैंट। वो बेहद प्यारी लग रही थी। गोरा रंग, काली आंखें, जिन पर बड़ी बड़ी पलकें थी, गुलाबी होंठ और सलीके से पोनीटेल में बंधे उसके भूरे रंग के कमर तक आते बाल। उसकी उम्र यही कोई 25 के आसपास होगी। उसके हाथ में उसका मेडिकल किट था।
उसने जल्दी से पार्थ की तरफ देखा और परेशान होकर कुछ कहना चाहा, पर पार्थ ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, पेशेंट इधर नहीं है डॉक्टर सिया, बेड पर लेटी है, जल्दी से उसे चेक करो और उसे इंजेक्शन दो। सिया की आंखों में हैरानी आ गई। पार्थ के कमरे में एक लड़की क्या कर रही थी?